नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के नए निर्माण केंद्र से पहले तेजस एलसीए MK-1A का लड़ाकू विमान का अनावरण किया। कहा, यह विमान रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भर उड़ान का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में आदि कर्मी योगी अभियान पर राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेंगी। गुजरात सरकार ने नए मंत्रिमंडल का गठन किया। श्री हर्ष सांगवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने समर्पण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट मामले पर गंभीरता जताई। केंद्र और CBI से जवाब मांगा। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन का सामना फ्रांस के एलेक्स लानियर से होगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की नासिक उत्पादन इकाई में बने पहले तेजस एलसीए MK-1A लड़ाकू जेट विमान का अनावरण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने HTT-40 प्रशिक्षु विमान बनाने वाली इकाई का भी शुभारंभ किया है। श्री सिंह ने नासिक डिवीजन में निर्मित सुखोई 30 LCA और HTT-40 विमानों की सराहना की और कहा है कि इनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की उड़ान है।
आज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk-1A तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी उड़ान मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आयोजित कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण जनजातीय ग्राम विजन 2030 की संकल्पना तैयार करना होगा। इसका उद्देश्य 50,000 से अधिक ग्राम कार्य योजनाओं के आधार पर जनजातीय समुदायों के साथ राष्ट्रव्यापी परामर्श से उभरे नीतिगत इनपुट, कार्यान्वयन ढांचे और परियोजना निष्पादन रणनीतियों को अंतिम रूप देना है। सम्मेलन के दौरान 5 विषयगत समूह पर विचार विमर्श किया जाएगा। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गुजरात में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने आज नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है। श्री हर्ष सांघवी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजित एक समारोह में 21 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उपस्थित रहे। नए मंत्रियों में 1 उप मुख्यमंत्री, 5 कैबिनेट स्तर के मंत्री, 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 12 राज्य मंत्री शामिल हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दलहन मिशन पर पीएम धन धान्य कृषि योजना के आत्मनिर्भरता के बारे में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में श्री चौहान ने इस योजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने का अनुरोध किया। वे आने वाले दिनों में पीएम धन धान्य कृषि योजना को तेजी से लागू करने की पुख्ता व्यवस्था के बारे में 11 मंत्रिमंडलों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का विकास इंजन बन गया है। श्री सिंधिया ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की एक वर्ष की उपलब्धियों पर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने वैश्विक मंच पर पूर्वोत्तर की क्षमता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर 17 हो गई है। श्री सिंधिया ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश और विकास के लिए कई पहल की गई है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष मई में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन के दौरान 4,48,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता हासिल हुई है।
पहली बार एक समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र 8 राज्यों के लिए एक इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और बड़ा सफल एक आयोजन रहा जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। 8 राज्यों के 7 मुख्यमंत्री और गवर्नर 8 के 8 उपस्थित थे। 110 देशों के राजदूत उपस्थित थे जिसके आधार पर ये 4,48,000 करोड़ के निवेश के आउटकम इस इन्वेस्टमेंट समिट से निकले।
छत्तीसगढ़ में आज 200 से ज्यादा नक्सलियों ने जगदलपुर में समर्पण किया है। अधिकारियों के अनुसार समर्पण करने वालों में गैरकानूनी सीपीआई मार्क्सवादी संगठन में कई पदों पर तैनात नक्सली शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन लोगों ने 153 हथियार भी सौंपे हैं, जिनमें 19 AK-47 राइफल और 17 SRL राइफल शामिल है।
छत्तीसगढ़ के इतिहास में नक्सलियों द्वारा अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ है। राज्य के बस्तर संभाग के अबूझमाड़ और कांकेर सहित विभिन्न इलाकों में सक्रिय 210 माओवादियों ने आज जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों ने आज जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपने हथियार सौंप कर आत्मसमर्पण किया। हिंसा का मार्ग त्यागने वाले इन नक्सलियों को पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत के संविधान की प्रति सौंपी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI से जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें धोखेबाज कानून प्रवर्तन एजेंसियों या न्यायिक अधिकारों का रूप धारण करके नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को ठगी का शिकार बनाते हैं। ये कार्रवाई हरियाणा के अम्बाला की 73 वर्षीय महिला की शिकायत पर की गई है। महिला ने कहा है कि धोखेबाजों ने सर्वोच्च न्यायालय के जिला आदेशों का इस्तेमाल कर उसे तथाकथित डिजिटल अरेस्ट में फंसाया और 1 करोड़ रुपए से अधिक की उगाही की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। प्रमुख उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीवान विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरा है। लोक गायक मैथिली ठाकुर दरभंगा जिले से अलीनगर चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से नामांकन भरेंगी। राज्य के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह पूर्णिया जिले के धमदाहा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल करेंगे। NDA ने सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के बाद राज्य विधानसभा की सभी 243 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला फ्रांस के एलेक्स लानियर से होगा। ओडेरिस में यह भारतीय मैच समय अनुसार 5:10 से शुरू होगा। पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद रियान अडानियो और रहमत हिदायत की जोड़ी से होगा। GST बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। ये उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ। इस कड़ी में आज एक नजर असम की अर्थव्यवस्था पर GST सुधारों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट।
नए GST सुधार ने असम के बुनकरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत प्रदान की है। नए कर ढांचे के तहत राज्य के पारंपरिक और क्षेत्रीय सामानों पर GST कम कर दिया गया है। इन सुधारों से चाय पर 5% GST लगने से असम की चाय उद्योग को लाभ मिला है। इससे चाय के दाम घटने के साथ ही असम की चाय देश विदेश के बाजारों में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगी। इसके साथ ही पारंपरिक महत्व के उत्पाद जैसे मूंगा सिल्क और गमोसा पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे बुनकरों को राहत मिली है। वे अब अपने उत्पाद बेहतर दाम पर बेच पा रहे हैं और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। पर्यटन क्षेत्र को भी इस सुधार से फायदा हुआ है। अब 7,500 रुपए तक प्रति रात के होटल कमरों पर केवल 5% GST लग रहा है, जिससे असम पर्यटन के लिए और अधिक किफायती गंतव्य बन गया है। GST में इस कटौती से बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और त्योहारों के दौरान और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। शिवांग मिश्रा के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नदियां केवल विरासत का प्रतीक नहीं बल्कि प्रगति के राजमार्ग है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लिखे गए एक लेख के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने पुनर्जीवित जलमार्गों के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि ये लेख पिछले कुछ वर्षों में रसद, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर प्रकाश डालता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निकास स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए निर्माण केंद्र से पहले तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान का अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में आदि कर्मियों के अभियान पर राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेंगी। गुजरात सरकार ने नए मंत्रिमंडल का गठन किया। श्री हर्ष सांघवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने समर्पण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट मामले में गंभीरता जताई। केंद्र और CBI से जवाब मांगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।